حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. چلتے ہیں اپنے تھرڈ ایپیسوڈ کی طرف. چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں. میں نے اس دفعہ اپنی آنکھیں جو بند کی اور کھولیں تو دیکھا ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت بڑے بڑے حوض بنے ہوئے جن میں پانی بھرا ہوا اور کچھ کھجور اور کشمش بھی ڈالی ہوئی ہے, غالباً پانی کو میٹھا کرنے کے لیے, جیسے ہم شربت کھولتے ہیں پانی میں. لوگ طواف کر کے آتے ہیں اور یہاں سے پانی پیتے ہیں. قریب ہی کچھ لوگ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا تیار کر رہے ہیں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے. میں نے دیکھا کچھ لوگ جو یہاں کے لوکل نہیں لگ رہے مگر کافی مفلوق الحال ہیں, وہ جمع ہیں, ان کو مفت کھانا دیا جا رہا ہے. میں نے سوچا اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے. میں نے سوالیہ انداز میں گائیڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رقم قریش جمع کرتے ہیں اور یہ ہر ایک کو لازمی دینی پڑتی ہے. اس کے ذریعے حاجیوں کو کا کھانا تیار کیا جاتا ہے. ایک طرف ظلم و ستم اور دوسری طرف حاجیوں کی خدمتیں, یہ کیسے دوہرے سٹینڈرڈ ہیں, یہ کیسی سوسائٹی ہے. پھر مجھے یاد آیا ہمارے معاشرے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک طرف مسجدیں بھری ہوئی رمضان میں, لوگ قرآن کے دور کر رہے ہیں, افطاریاں ہو رہی ہیں, صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے, دعائیں کی جا رہی ہیں, آنسو گر رہے ہیں. دوسری طرف جھوٹ, چور بازاری, کرپشن, بے ایمانی, لوٹ کسوٹ, والدین سے بدتمیزیاں, یتیموں بیواؤں سے زیادتیاں, وراثت میں حق نہیں دیے جا رہے, کلم کھلا فحاشی. پھر فرق کیا ہے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ یہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, ان کے آگے نذرانے دے رہے ہیں, ان کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہیں اور پھر طواف کے لیے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی پہلے چادریں چڑھائی جاتی ہیں, پیر صاحب کے نام کی نیاز دی جاتی ہے, قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے. میں اپنے خیالوں میں ایک طرف جا رہی تھی کہ مجھے شور سنائی دیا. کسی بڑے سردار نے کسی بات پہ بگڑ کے اپنی تلوار نکال لی تھی. جو ہی اس نے تلوار نکالی, اس کے قبیلے کے کچھ نوجوان کہیں ادھر ادھر سے فوراً شور سن کے اس کی طرف لپکے اور اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, جیسے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے. انہوں نے یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اپنے سردار سے پوچھ ہی لیں کہ معاملہ کیا ہے, یا اس کو ٹھنڈا کریں, یا یہی دیکھ لیں کہ کہیں ان کے سردار کی غلطی تو نہیں. بلکہ الٹا, سردار کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی تلواریں نکال لی. یوں لگتا تھا یہاں پر ابھی کوئی جنگ کھڑی ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ معاملہ بڑھتا, ایک بزرگ کہیں سے آئے اور دونوں کو پیچھے دھکیلا. سردار کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں, پتہ نہیں کیا ہوا, مگر کیا ذرا ذرا سی بات پر یہ اس طرح سے لڑنے لگتے. ان بزرگ نے کعبہ کی حرمت کا واسطہ دیا, تب جا کے سردار کہیں ٹھنڈا ہوا اور اس نے اپنی تلوار واپس ڈالی. پھر وہ بڑی نخوت کے ساتھ एक तरफ को निकल गया। लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। मैं हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, कितनी जाहिलियत है, कैसे ये जरा जरा सी बात पे आपे से बाहर होके एक दूसरे का खून करने को तैयार हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा, हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता है। आए दिन ये खबरें आती हैं बच्चों की लड़ाई पे, लोगों ने हथियार निकाल लिए और फायरिंग करके एक दूसरे को खत्म कर दिया। कभी किसी जगह का आता है कि एक खानदान वालों ने दूसरे से दुश्मनी की वजह से उसके इतने बंदे मार दिए। बड़े बड़े वडेरे किस्म के लोग अपने इलाके के गरीब लोगों को ऐसे हकारत से देखते हैं जैसे वो जानवर हों। हमारे माशरे में भी तो यही सब कुछ होता है। मैं देख रही थी यहां पर भी गुलाम किस्म के लोगों का बुरा ही हाल था, इंतहाई खस्ता हाल, मिस्कीनी उनके चेहरों से टपक रही थी। यूं लगता था बहुत ही सख्त हालात में रहते हैं। कुछ तो सिर्फ तहबंद के सिवा और कुछ भी जिस्म पे कपड़ा नहीं पाते थे, कमर पे भी जरबों के निशान नजर आ रहे थे। शायद इनको बुरी तरह मारा पीटा जाता होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने मालदार नजर आ रहे थे, कीमती पोशाकें पहनी हुई थी, गुलाम उनके आगे पीछे थे। एक तरफ वो तबका जो इतना मालदार और दूसरी तरफ वो तबका जो ऐसे थे जैसे रोबोट हो, जिनके मुंह में जुबान नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे, बस काम करने वाली मशीनें थी। शायद इनके नजदीक कुछ जानवर थे। ये कैसा माशरा है। एक तरफ वो लोग जो अपने आप को इंसानियत से भी बुलंद समझते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो इंसानियत की सतह से भी गिरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, मैं हैरान क्यों हो रही हूं, क्या हमारे यहां भी ऐसा नहीं? एक तबका तो वो है जिसके यहाँ मेज पर यहां से वहां तक खानों की लाइन लगी होती है, और दूसरा तबका वो है जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक वो है जो जहाजों में सफर करते हैं, दूसरे वो है जिनके पास मीलों चलने के लिए एक साइकिल भी नहीं। एक वो है जिनके जिस्मों को देख के खौफ आता है, हड्डियों के ढांचे हैं जैसे, दूसरी तरफ वो है जो अपना वजन कम करने के लिए परेशान है। इन्हीं सोचों में चलते चलते ये मैं कहाँ आ गई। ये कैसी जगह है, यहां तो इंसान बिक रहे हैं। इंसानों के गलों में तौक डाले हुए थे और उनकी बोलियां लग रही थी। मैं हैरान थी कि उनमें कुछ बच्चे भी बिक रहे थे। इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, ये क्या इस दिन के लिए पैदा हुए? इंसानियत की तजही किससे ज्यादा क्या हो सकती है कि इंसान भेड़ बकरियों की तरह खरीदे और बेचे जा रहे हो। मुझे फिक्र इस बात की थी कि मेरे नबी इस सबको कैसे ठीक करेंगे, ये तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। मैंने देखा एक आदमी एक गुलाम को खरीदने के लिए खड़ा हुआ है। वो गुलाम के मालिक से कह रहा था, इतनी रकम मेरे पास इस वक्त तो नहीं, मगर हाँ मैंने अमीन के पास रखवाई भी है, शाम तक का वक्त दो तो मैं लेकर आता हूँ। वो बोला, ठीक है तुम ले आओ। मैंने देखा वो शख्स तेजी से निकला और एक तरफ को बढ़ा। एक घर के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अंदर से एक खूबसूरत आवाज आई, कौन? वो बोला, शैबा। थोड़ी देर में घर का पर्दा उठा तो ये कोई और नहीं थे, ये तो मेरे नबी हैं। जवानी की भरपूर उम्र को पहुंचे हुए, चेहरा ऐसा हसीन कि जिसकी ताब ना लाई जा सके। मेरी नजर जब अपने नबी पे पड़ी तो आपके हुस्न, आपका रोब, आपकी अजमत दिल में घर कर गई और खुद ब खुद अदब से मेरी निगाहें झुक गई। आपकी जाते अकदस से बढ़ के हसीन मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा, ना किसी माँ ने कभी जना होगा। आप ऐसे थे गोया आपको आपकी चाहत के मुताबिक अल्लाह ताला ने बनाया, ना कद बहुत लंबा ना बहुत छोटा, बिल्कुल मुनासिब, कंधे कुशादा, कंधों का दरमियानी फासला ज्यादा था, जिनको हम ब्रॉड शोल्डर्स कहते हैं, बाल इतने लंबे थे कि कंधों और कानों के दरमियान तक आ रहे थे, और कुछ खमदार बाल थे यानी करली, घने और स्याह थे, कुछ बाल पेशानी पे डाले हुए थे, चेहरा ऐसा चमकदार था गोया 14वीं रात का चांद चमक रहा हो, रंग गोरा था, बिल्कुल मुनासिब डेल डोल, ना मोटे ना ऐसे दुबले के हड्डियां नजर आ रही हूं, ना ही ढीला ढाला जिसम, एक गठा हुआ मजबूत जिसम था, इंतहाई खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, आंखें बड़ी बड़ी, पलकें लंबी और दाढ़ी घनी थी, आंखों का रंग सिया था, यूं लगता था आंखों में सुरमा लगाया हुआ, हालांकि सुरमा नहीं लगा था, दांत इतने खूबसूरत और मुतवाजन और चमकदार जैसे मोती हूं। आपके दरवाजे पे आने से ऐसी खुशबू आई, मैं हैरान हो गई, ये खुशबू आपकी थी, आपके चेहरे पे सिवाय शराफत और बुजुर्गी और सुकून के कुछ भी नहीं था, मेरे नबी ने मुस्कुराकर आने वाले से आने का मकसद पूछा, वो बोला मेरी रकम जो आपके पास रखवाई है वो चाहिए, बगैर किसी तवक्कुफ के मेरे नबी अंदर गए और एक थैली उठा लाए और उसके हाथ में रख ली, उसने थैली ली और ये कहते हुए पलट गया कि मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, आप सादिक और अमीन है। वाकई ऐसे माशरे में जहां लूट खसूट के लोग अपने रिश्तेदारों का भी माल हड़प कर लेते हो और कोई पूछने वाला ना हो, वहां पर एक इस कदर अमानतदार आदमी होना कितनी बड़ी बात है। मैं ये सोच रही थी अगर इस माशरे को देखकर मेरा दिल कट रहा है तो मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी, आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है, और ये घराना कितना मुबारक है, ये घर कितना बाबरकत है जहां मेरे नबी रहते हैं, मगर ये ना तो कोई महल है ना यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ रह रही है और कोई पहरेदार नहीं, कोई लौंडियां गुलाम नहीं जैसे दूसरे सरदारों के साथ मैंने देखे, कोई फैंसी घर नहीं, बहुत आम सा छोटा सा घर है, पूरी दुनिया के इंसानों में से बेहतरीन इंसान, पैगंबरों के सरदार इस घर में रहते हैं, और इनके लिए तो रेड कारपेट होना चाहिए, इनके लिए तो हटो बच्चों का शोर होना चाहिए, इनके लिए तो हाजिर बाश गुलाम आगे पीछे होने चाहिए, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं, शायद हमने ही सरदारी के कुछ और स्टैंडर्ड समझ रखे, और ये सरदारी कुछ और ही है जिसका तसव्वुर हमारे माशरे में तो है ही नहीं, और शायद इसीलिए इस माशरे ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया जब इन्होंने नबुवत का ऐलान किया, कहाँ इस माशरे के बड़े बड़े मालदार सरदार जिनका ग्लैमर इतना ज्यादा है, और कहाँ मेरे नबी की माली हैसियत। शाम ढल रही थी और शाम होते ही जगह जगह शराब की मजलिसें लगने लगी, गुलाम शराबों के जाम भरते जा रहे थे और सरदार किस्म के लोग नशे में गर्क ना जाने क्या क्या बोले जा रहे थे, एक तरफ किस्सा गोई की मजलिस लगी हुई थी, इनके जमाने की यही फिल्में और ड्रामे हैं, कई नौजवान यहाँ बैठे किस्सों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे मगर किसी मजलिस में भी मेरे नबी नजर नहीं आ रहे थे, कुछ दूर एक तरफ गाने बजाने की मजलिस लगी हुई थी, एक आदमी ने गुजरते हुए दूसरे से पूछा ये क्या है, उसने कहा तुम्हें नहीं पता उस फलां कुरैश के आदमी की शादी उस औरत से हो रही है, यहां पे भी मुझे अपने नबी नजर नहीं आए, लगता है वो ऐसी मजलिसों से दूर रहने वाले। इतने में एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, कोई काबा की छत पे चढ़ के ऐलान कर रहा था लोगो अब्दुल्ला बिन जुदान की देग की तरफ आओ, मैं हैरान हूँ, ये किस देख का ऐलान कर रहा है? मसाकीन और गरीब लोग एक तरफ हजूम की सूरत में चल दिए। लगता है ये रोज का मामूल है, वरना इनको क्या पता कि वो देख कहाँ है। मैं भी उनके पीछे हो ली। देखा तो आगे इतनी बड़ी देख थी, इतनी ऊंची थी कि ऊंट सवार अपने ऊंट पे बैठे बैठे उसमें से खाना खा सकता था। यहाँ मुसलसल लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा था। बहुत से मिस्कीन लोग यहाँ जमा थे, सब खाना ले रहे थे और अब्दुल्ला बिन जुदान को दुआएं दे रहे थे। ना किसी का नाम यहाँ पूछा जा रहा था, ना हसब नसब। किसी को भी इनकार नहीं किया जाता, जो आता था उसको भर के दिया जाता था और वो खुश होके जाता था और उसकी तारीफें करता था। मैंने देखा कि इस इलाके में कोई ज़राअत नहीं है, कोई सनत नहीं है, फिर भी यहाँ हर चीज़ मौजूद है, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं। वाकई मक्का कोई बहुत ही बड़ी तिजारती मंडी लग रहा है। सब कुछ बाहर से आता है, लोग यहाँ लाकर अपना सामान बेचते हैं। ये ट्रेडिंग हब है ये, यहाँ हर किस्म के फल और खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पर ताजिरों को बड़ी इज्जत से देखा जाता है। लगता है इनके यहाँ ये एक बहुत ही मुअज्ज़ज़ पेशा है, जैसे हमारे यहाँ कुछ पेशों को बहुत कामयाबी की अलामत समझा जाता है, इसी तरह इनके यहाँ तिजारत कोई बड़ी कदलो मंजिलत वाली चीज़ है। मैं अभी इन लोगों को देख रही थी कि दूर से मुझे मेरे नबी आते हुए नजर आए। वो चलते हुए आ रहे थे। एक शख्स जिसने बुतों के नाम पे कुर्बानी की हुई थी और गोश्त तकसीम कर रहा था, उसने अपने गुलाम से कहा, अमीन को भी कुछ दे दो। गुलाम आगे बढ़ा और उस कुर्बानी में से गोश्त उठा के मेरे नबी के आगे ले जाके उनको पेश किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ नौजवान एक बैठ जगह बैठे हुए जुआ खेल रहे थे, और ये सब इस मुआशरे में कितना एक्सेप्टेबल था। यहाँ कोई किसी चीज़ को बुराई नहीं समझ रहा, बल्कि ये नौजवानों के आम मशाकल समझे जा रहे हैं। जवानी में लगता है ये लोग इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते, कहीं शराब पी रहे, कहीं जुआ खेल रहे। हैरत है कि इनमें पलने बढ़ने वाले मेरे नबी, वो भी तो जवानी की दहलीज पे हैं और भरपूर जवानी के आलम में, तब भी इनका किरदार कितना बेदाग है, तब भी उनमें ये कोई बुराई नजर नहीं आ रही। जिनमें इस माशरे के आम नौजवान मुब्तला हैं, हालांकि ना मेरे नबी के ऊपर कोई वालदैन का साया है, ना कोई माशरे का प्रेशर है, फिर ऐसा पाक किरदार रखना कितनी बड़ी खूबी है। और मैंने देखा कि मेरे नबी चलते हुए जा रहे हैं, मगर कोई आप पे को खास तवज्जो नहीं दे रहा, कोई आपको वीआईपी नहीं समझ रहा। मैंने सोचा इनको क्या मालूम ये कितनी अजीम हस्ती हैं जो इनके दरमियान मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर था कि जो भी उनके पास जाके बात करता तो बड़े एहतराम से उनको पुकारता, कोई सादिक कहता, कोई अमीन कहता, कोई करीम इब्ने करीम कहता। और मेरे नबी जिससे भी बात कर रहे थे, नबी तुली, कोई फालतू बात नहीं, कोई बेकार बात नहीं, कोई गपशप करने कहीं नहीं खड़े हुए, कह कह लगाते हुए मैंने नहीं देखा। मैं हैरान थी कि आपकी ये तरबियत इस मुआशरे में किसने की। वो लोग जो खुद अदब व आदाब से खाली हैं, वो आपकी तरबियत कैसे कर सकते थे। मैं चलते चलते एक कदरे बड़े घर के पास आ पहुंची। एक किसी मालदार का घर लगता है। मैं घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर से आवाजें आ रही थी। एक औरत कह रही थी, सुनाओ मैसरा, मोहम्मद के साथ सफर कैसा रहा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से आवाज आई, बीबी हम तो पहले भी आपका माले तिजारत लेकर जाते थे, मगर इतना मुनाफा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये यकीनन मोहम्मद की बरकत, उनकी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, मामला फहमी का नतीजा है। औरत आगे से बोली, और कुछ खास बात जो तुमने उनमें देखी हो? वो बोला, जी जी मोहम्मद बसरा पहुंच के नस्तूरा के गिरजे के पास दरख्त के साये में बैठ गए। नस्तूरा से पहले भी मेरी जान पहचान थी, वो मशहूर राहिब है जो पहले भी मुझे मिला करता था। उसने मुझे बुला के पूछा था कि वे मैसरा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठे? मैंने कहा, ये कुरैश का एक आदमी है। बीबी आप जानती हैं उसने फिर आगे से मुझे क्या कहा? औरत बोली, क्या? मैसरा कहने लगा, उसने कहा, इस दरख्त के नीचे तो सिवाय किसी नबी के और कोई नहीं ठहरा। फिर नस्तूरा ने मुझसे पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्ख डोरे हैं? तो मैंने कहा, हाँ वो तो हर वक्त ही रहते हैं। तो वो कहने लगा, ये वो ही हैं, काश मैं उन्हें उस वक्त पा जाऊं जब ये मबऊस हो। मैं खामोशी से थोड़ी देर ये बातें सुनती रही, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अंदर झांक के देखा, एक पुरवकार हयादार औरत जिसकी उम्र लगभग कोई 40 के करीब होगी, बड़े गौर से अपने गुलाम की बातें सुन रही थी। गुलाम मुसलसल बोल रहा था, और बीबी सिर्फ ये नहीं, बसरा के बाजार में एक दिन एक आदमी ने मोहम्मद से किसी बात पर बहस शुरू कर दी और उनसे कहने लगा, आप लात और उज्जा की कसम खाएं। तो उन्होंने कहा, मैंने कभी उनकी कसम नहीं खाई, कभी उनके पास से गुजरा भी हूं तो उनसे मुंह फेर लिया। जानती हैं इसके बाद उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा, आपकी बात तो वाकई फैसला कुन है। फिर बीबी वो आदमी मुझे लेकर अलग हो गया और कहने लगा, वल्लाही ये नबी हैं, इनके औसाफ हमारे उलमा अपनी किताबों में पाते हैं। और बीबी मैं क्या बताऊं, मैसरा ने कुछ हैरत के साथ कहा, मैं देखता था कि जब धूप होती तो धूप की शिद्दत में इन पे मुसलसल छांव रहती थी। मैंने सोचा, ये यकीनन खदीजा है। उन्होंने मैसरा को जाने का इशारा किया। यूं लगता था कि वो मेरे नबी के अजीम किरदार और उसने मामला से बहुत मुतासिर हुई। खतीजा ने लौंडी से फरमाया, नफीसा को बुला लाओ। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां राजो नियाज करने लगी। फिर नफीसा उठते हुए बोली, ताहिरा मैं ये पैगाम आपके लिए लेकर जाती हूं और अभी वापस आके आपको बताती हूं। मैंने लफ्ज ताहिरा सुना तो वाकई मुझे इस नाम की सच्ची तस्वीर नजर आई। खदीजा में आपकी पाकीजा सीरत इसी काबिल है कि आपको ये खूबसूरत लकब दिया जाता। नफीसा के जाने के बाद खदीजा बेताबी से उनका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि नफीसा एक खुशखबरी लेकर वापस लौटी। खदीजा ने आगे बढ़ के बेचैनी से उनसे पूछा, क्या जवाब मिला? उनकी सांस अभी फूली हुई थी, लगता था भागम भाग आई है। जरा सांस लेने को बैठ गई, फिर जल्दी से बोली, मैं गई थी, मैंने मोहम्मद से कहा आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहने लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ? तब मैंने कहा, अगर आपकी ये जरूरत पूरी हो जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? तो उन्होंने पूछा, वो कौन है? फिर मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। इस पे वो बोले, भला ये कैसे मुमकिन है? मैंने उनसे कहा कि बस आप ये मामला मुझ पे छोड़ दें। हदीचा के चेहरे से खुशी झलकने लगी। वो झट से बोली, अच्छा फिर वो आ जाए हमारे यहाँ फलां फलां दिन, मैं भी अपने चचा को बुला लूंगी और वो भी अपने साथ मेहमान ले आए। मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई, इतनी सादगी, ना कोई डेट फिक्सिंग की तकरीब, ना मंगनी की, ना जोड़ों का तबादला, ना 200 लोगों की लिस्ट, ना महीनों पहले से शादी की तैयारियां, ना कोई हॉल की बुकिंग, कुछ ही दिन गुजरे होंगे, इधर से मेरे नबी अपने चचाओं के साथ तशरीफ ले आए, उधर से खतीजा ने अपने चचा को बुला लिया। खतीजा खूबसूरत रूसी जोड़े में इंतहाई पाकीजा लग रही थी। उन्होंने एक गाय जिबा करवा के उसका गोश्त दावत में दिया था। अरे मैं तो भूल ही गई, इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सफर का महीना है, इसमें तो हमारे यहाँ शादियां नहीं होती। सफर को तो हमारे यहाँ मनहूस समझा जाता है, और यहाँ ये सफर के आखिर में निकाह कर रहे हैं, तब भी इनके निकाह में इतनी बरकत है। इस तकरीब में लगभग 10-12 लोग शामिल थे। दो जहानों के सरदार की पहली शादी, इसमें तो बहुत धूमधाम होनी चाहिए थी, इसमें तो पटाखे और गाजे बाजे होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। मैं हैरान थी कि इस मुआशरे में भी निकाह इस तरह किया जाता है, और फिर मेहर भी रखा गया, कोई 12.5 ओखी या चांदी, जो हमारे यहाँ 1487 ग्राम्स के बराबर बनती है, और उस जमाने में 20 ऊंटनियों की कीमत बनती थी। इतना मेहर था और ये अच्छा खासा था। मैंने सोचा हमारे यहां 3200 रुपए, 4 आने वाला मेहर शरई मेहर कहलाता है, वो फिर कहां से आ गया? 3200 रुपए में तो मेरे जमाने में गोश्त की बोटी भी नहीं आती, कहां 20 ऊंटनियां आती। अबू तालिब खुतबा देकर अपनी जगह बैठ गए, तो उनके बाद खतीजा की तरफ से वरका बिन नौफल, जो एक बुजुर्ग से थे, वो खड़े हुए और उन्होंने खुतबा देना शुरू कर दिया। निकाह की सादा मगर पुरवकार तकरीब खत्म हुई। तकरीब के बाद सईदा खतीजा ने सोने की दो ओखिया लिए और गुलाम को बुलाया, जाओ मोहम्मद की खिदमत में ले जाओ, और इनसे कहना कि इससे आप अच्छे से कपड़े खरीद के और वो मुझे तोहफे में दे दें, और कुछ मींडे और कुछ और चीजें ले लें। मुझे उन पर इतना प्यार आया, कितनी जहांदीदा औरत थी, जानती थी कि मेरे नबी मालदार नहीं है, तो खुद ही पैसे दे रही है कि इन्हीं से जोड़ा खरीद के मुझे ही तोहफा दे दें। ये कितनी प्यारी शादी थी। अगले दिन वलीमा था, मैंने देखा मेरे नबी वलीमे पे दो ऊंट नहार कर रहे हैं, और इनसे लोगों की दावत की जा रही है। खदीजा की तरफ से दफ का भी इंतजाम था, छोटी बच्चियां दफ बचा के इस पे गीत गा रही थी। इनमें कोई फहाशी की बात नहीं थी, ना कोई जज्बात भड़काने वाले अशार थे, ना ही नौजवान लड़कियां ऐसे गा रही थी कि मर्द सुने और फितने में पड़े। मैंने देखा अबू तालिब बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने सुना वो कह रहे थे, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारी परेशानियां और फिकरात को दूर कर दिया। सुबहान अल्लाह, ये कैसे लोग हैं। खतीजा एक बड़ी समझदार खातून लग रही थी, और मेरे नबी से निकाह करने के बाद तो इनकी अजमत को 4 चांद लग गए थे। मैं सोच रही थी हमारे यहाँ तो लड़की वालों का निकाह का पैगाम भिजवाना कितना मायूब समझा जाता है, मगर यहाँ सैयदा खतीजा ने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की। जिन चीज़ों को हम बाय से शर्म समझते हैं उनमें शर्म नहीं, और जिन चीज़ों में हम को शर्म करनी चाहिए उनमें हम शर्म नहीं करते। मेरे नबी अब खतीजा के घर में ही रहने लगे, और इसमें उन्होंने कोई आर नहीं समझी। कई लोगों को मैंने बात करते हुए सुना, वो कह रहे थे खतीजा इतनी दौलतमंद खातून है, कितने ही लोग इनसे शादी करना चाहते थे, मगर उन्होंने मेरे नबी को चुना। इसी से मुझे समझ आ गई कि वो कितनी अकलमंद है। इनकी शादी कितनी स्ट्रेस फ्री शादी थी, ना कोई शोर ना हंगामा, ना रिश्तेदारों के गिले शिकवे और ना नाराजगियां, ना कोई ढोलकियां और ना मेहंदियां, ना साल भर की तैयारियां, ना कोई वीडियो और ना फोटोग्राफी, ना ढोल ताशे और ना कोई शराबों के दौर, अगर खतीजा मालदार खातून थी तो इनमें तकब्बुर नहीं था, न खुव्वत नहीं थी जैसे दूसरे मक्का के सरदारों में थी। इंतहाई सादा तबीयत थी, फख्र व गुरूर नाम की कोई चीज नहीं थी, ना नमूदो नुमाइश थी, ना कोई नाज नखरा था। मैं अपने नबी को बहुत खुश देख रही थी सैयदा खदीजा के साथ, ये एक मिसाली जोड़ा नजर आ रहा था। शादी के कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि सैयदा खदीजा ने मेरे नबी को एक बच्चा जैद गुलाम के तौर पे दे दिया कि ये आपके कामकाज किया करेगा, आपकी खिदमत किया करेगा। मुझे इस बच्चे की खुशकिस्मती के ऊपर बड़ा नाज हुआ। यहाँ तक आज का एपिसोड है इंशाअल्लाह ताला।